नमस्कार श्रोताओं, मैं रामाश्री प्रसाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ कृषक मंच। कृषक मंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको दी जाती है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं शशिकांत जी, तो आज इनसे हम सुनेंगे कि बासमती सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। और तो शशिकांत जी, आपका कृषक मंच में स्वागत है।
धन्यवाद।
तो बासमती धान विश्व में अपनी एक विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए भली भांति जाना जाता है। शशिकांत जी, बताइए कि किसान भाई के लिए भूमि का चयन और उसका चुनाव कैसे करते हैं और किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए?
जी हाँ, हमारे किसान भाई अगर बासमती धान की खेती करना चाहते हैं तो भूमि का चयन, जो भूमि की संरचना, जलवायु एवं अन्य संबंधित जो कारक है बासमती धान की सुगंध एवं स्वाद को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। बासमती धान की खेती के लिए अच्छे जल धारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है।
चिकनी और मटियार मिट्टी अच्छी मानी जाती है जी। और शशिकांत जी, आप बताइए कि धान के लिए, मतलब बासमती धान के लिए, इसकी कौन कौन सी प्रजाति होती है?
जी हाँ, बासमती धान की अच्छी पैदावार की और अच्छी गुणवत्ता लेने के लिए जो है, जो आप प्रजाति का हमारे किसान भाई चुनाव करें, उनमें टाइप 3 बासमती 370, तारावंडी बासमती और CSR 30, और एक है पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 2 और पूसा सुगंध 3 और पंत सुगंध 15। जी हाँ, इन सभी प्रजातियों में से किसी प्रजाति का आप चयन कर लें
जी। अच्छा, इसमें बीज की मात्रा हम कितना डालें?
जी हाँ, बीज की मात्रा के लिए जो प्रजाति के अनुसार बासमती धान के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होनी चाहिए।
मतलब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
पर्याप्त सबसे अच्छी पर्याप्त होती है। जी हाँ, और बीज को एमिसान या अन्य मरकरी फफूंदनाशी से उपचारित करके बोना चाहिए।
रोपाई के लिए खेत की तैयारी और रोपाई का समय कब से कब होता है?
जी हाँ, ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद खेत में रोपाई के 10 से 15 दिन पूर्व पानी भर देने से पिछली फसल के अवशेष जो है वो नष्ट हो जाते हैं और खेती की मिट्टी को मुलायम व लेहयुक्त बनाने के लिए पानी भरी खेत की दो या तीन जुताई करके जो है पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। और बासमती धान की रोपाई का समय इसकी उपज तथा गुणवत्ता को जो है प्रभावित करता है। 25 से 30 दिन की पौध बासमती धान की रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बासमती धान की जो पूसा बासमती एक प्रजाति है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगा देना चाहिए तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रजाति को 15 जुलाई तक रोप देना चाहिए।
अच्छा, पौध की रोपाई के लिए हम कितनी से कितनी दूर तक मतलब उसको रोपाई करें?
यह पौधे की रोपाई के लिए 20x15 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो ही ठीक मानी जाती है।
मान ली 20 से 15 सेंटीमीटर के बीच में
देर से अगर रोपाई कर रहे हैं तो 15x15 सेंटीमीटर की दूरी जो है पौधों की रोपाई के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है
जी। इसमें खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी कितनी डालनी पड़ती है?
जी हाँ, बासमती धान में खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता जो है सामान्य धान की अपेक्षा आधी होती है और जो है इनकी उन्नत प्रजातियों की लंबाई जो है कम होने के कारण नत्रजन की मांग भी जो है अधिक होती है और 90 से 100 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास जो है हमें धान के जो खेती कर रहे हैं किसान भाई उनमें बासमती चावल के लिए देना चाहिए।
अच्छा, ये मन देसी भी खाद का उपयोग कर सकते हैं?
जी हाँ, देसी खाद का उपयोग आप एकदम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि इससे इसके प्रयोग से जो है पैदावार भी काफी होती है।
जी हाँ जी। और इसकी सिंचाई प्रबंधन के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं?
इस सिंचाई प्रबंधन के लिए धान की फसल को सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसकी प्रबंधन के लिए जो है पानी की उचित उपलब्धता वाले स्थान पर ही से उगाएं और पानी का उचित प्रबंध न होने के कारण इसकी उपज में काफी गिरावट भी आ जाती है और जो दाना बनना है उसकी अवस्था तक खेत में पानी का स्तर जो है बनाए रखना चाहिए और पर्याप्त वर्षा न होने की अवस्था में आवश्यकता अनुसार जो है सिंचाई हमें करते रहना चाहिए और उपज के लिए जो बहुत ही आवश्यक है। और फसल की कटाई के 15 दिन पहले जो है खेत से पानी निकाल देना चाहिए।
मान लिया फसल की कटाई से 15 दिन पानी पहले ही उसको बंद कर देना चाहिए, नहीं ताकि हमारा धान मतलब काटने में उसको वहाँ आराम पड़े।
जी
जी। और इसमें खर पतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है?
जी हाँ, बासमती धान में खर पतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई पहली निंदाई और रोपाई के 20 दिन के अंदर तथा दूसरी रोपाई 40 दिन के अंदर करनी चाहिए किसान भाइयों को।
मतलब 20 और 40 दिन के अंतराल में हम उसको कर दें।
खर पतवार है उनका रासायनिक विष नियंत्रण के लिए 1.5 किलोग्राम मात्रा का बूटा क्लोर या थायोबेन कार्ब जो है प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 2-3 दिन के अंदर प्रयोग कर देनी चाहिए और रसायन के प्रयोग के समय खेतों में 2-3 सेंटीमीटर पानी जो है होना चाहिए। इस प्रकार जो है वो खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं।
अच्छा, धान में मतलब जैसे कीट या रोग पतंग जैसे लग जाते हैं इससे हमारा पौधा सूख जाता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है?
यह धान की फसल में जो कीट लगते हैं बहुत ही नुकसानदायक होते हैं धान की फसल के लिए, उनमें जो कीट है एक धान का भूरा एवं सफेद खुदरा कीट एक है, दूसरा है धान का छेदक कीट।
ये गंधी कीट भी है, इसका भी प्रकोप ज्यादा रहता है धान?
गंधी कीट जो है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ
जी।
और एक है धान का पत्ती लपेटक कीट, जो पत्तियों को लपेट कर उनमें रहने लगता है और उसके प्रकोप से जो है धान की फसल जो है नुकसान पहुँचती है।
अच्छा, बासमती धान में प्रमुख रोग कौन से बहुत है जिसमें हानि उसको ज्यादा पहुँचाते हैं?
धान का एक झोंका रोग।
जी, एक झोंका रोग।
धान का एक भूरा धब्बा रोग है, एक रोग है जो धान का खैरा रोग जिसे कहते हैं, और एक धान का मिथ्या कड़ुआ रोग है। ये सब रोग जो है धान की फसल को ये बहुत जो हानिकारक होते हैं।
उपयोग कीटों रोगों नियंत्रण के लिए क्या क्या इसमें रासायनिक जैविक साधन जैसे को गुणवत्ता बरतनी पड़ती है?
यहाँ इनके लिए जो है तना छेदक जिसे है
जी,
ये सब कीट है तो इनके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप 20 गुड़े 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगा देना चाहिए।
जी।
और शुरू में इसकी ऊंचाई लगाना जो है 50 सेंटीमीटर, जैसे जैसे फल बढ़ती हो इसकी ऊंचाई को फसल की ऊंचाई से 25-30 सेंटीमीटर बढ़ाते रहना चाहिए।
मतलब 25-30 सेंटीमीटर बढ़ाते रहना चाहिए।
और कार्टा फिप्रोनिल 0.4% नामक रसायन की 19 किलोग्राम मात्रा को खेत में अच्छी प्रकार बिखेर दें और 5-6 दिनों तक 3-4 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें तथा कल्ले फूटने तक के बाद जो है पेपरोनिल 5% घुलनशील जो द्रव्य है 1 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें।
इसको कटाई और मराई के लिए क्या क्या हमको करना पड़ता है और कितने दिन में हमारा धान जब पक जाता है तो उसको हम कटाई का काम करने लगते हैं?
जी हाँ, कटाई और मराई के लिए सबसे पहले मैं किसान भाई सुनूं कि बासमती धान के 90% से अधिक दानों का रंग जब हरे से पीले सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाए तो फसल को काट लेना चाहिए और देर से फसल की कटाई करने पर दाने जो है छिटक कर नीचे गिर जाते हैं, फलस्वरूप ऊपर से काफी भी हमारा ह्रास भी होता है और कटाई के तुरंत बाद मराई भी कर लेनी चाहिए और देर से मराई करने पर बासमती चावल की गुणवत्ता में जो है वो कमी आ जाती है।
अच्छा, बासमती धान मान लीजिए जब काट के आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका मतलब आप धान ही बेचते हैं कि चावल बेचते हैं?
जी, चावल ही बेचते हैं उसका।
ये चावल ठीक रहता है इसलिए कि मतलब हमको अच्छा उसमें मुनाफा मिलता है।
जी,
शशिकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आपने हमारे किसान भाइयों को धान की खेती के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आज आपने सुना कि धान की खेती किस प्रकार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पैदावार की जा सके। मुझे उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप लाभ उठाएंगे। अब समय हो चुका है हमारे कार्यक्रम समाप्त करने का, हमें आज्ञा दीजिए कल इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।